नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौर। 23 जुलाई 2021 के साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, जापान के टोक्यो शहर में ओलंपिक खेलों की औपचारिक शुरुआत। यूएन प्रमुख ने कहा, मानवता की सर्वोत्तम क्षमताओं और मूल्यों को प्रदर्शित करती है ओलंपिक भावना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी, अफ्रीका में खत्म नहीं हुई है कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर। भारी आर्थिक और मानवीय तबाही का कारण बनने वाली प्राकृतिक आपदाओं की सूची में जल संबंधी खतरे सबसे ऊपर। कोविड से पुनर्बहाली के दौरान रोजगार शुदा महिलाओं की संख्या में गिरावट की आशंका। अगस्त महीने में सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष देश होगा भारत, और स्वस्थ भोजन की उपलब्धता के लिए स्वस्थ पर्यावरण में करना होगा निवेश। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने शुक्रवार को जापान के टोक्यो में ओलंपिक खेलों के औपचारिक उद्घाटन पर सभी खिलाड़ियों का अभिवादन किया है। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा कि ओलंपिक भावना मानवता की सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं और मूल्यों को बाहर लाती है। टीम वर्क, एकजुटता, प्रतिभा और सहनशीलता।
Every athlete in Tokyo has overcome enormous obstacles and demonstrated great determination. If we bring that same energy to our global challenges, we can achieve anything.
महासचिव गुटेरेश कह रहे थे कि टोक्यो में हर खिलाड़ी ने विशाल अवरोधों को पार किया है और महान संकल्प का परिचय दिया है। अगर हम यही ऊर्जा वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में लगाएं, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, एक स्वच्छ, हरित और फलती फूलती पृथ्वी। यूएन प्रमुख ने खिलाड़ियों से कहा कि साझा रास्ते के हर कदम पर उनका साथी बनना संयुक्त राष्ट्र के लिए सम्मान की बात है। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसस ने ओलंपिक खेलों को दुनिया भर में उम्मीद फैलाने का एक अवसर करार दिया था। 8 हफ्तों से कोविड-19 संक्रमणों में लगातार बढ़ोतरी के बाद अफ्रीकी देशों में नए मामलों की रफ्तार धीमी हुई है, मगर ये प्रगति अल्पकालीन हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय ने ये चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ये ध्यान रखना होगा कि अभी अफ्रीका में तीसरी लहर खत्म नहीं हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ यूएन न्यूज हिंदी के प्रमुख महबूब खान।
अफ्रीका क्षेत्र में इस सप्ताह कोविड-19 के मामलों में 1.7% की गिरावट होकर ये संख्या लगभग 2,82,000 पर पहुंची। ऐसा दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 के मामलों में तेज गिरावट की बदौलत हुआ, जहां ज्यादा संख्या में संक्रमण मामलों की खबरें मिली हैं। लेकिन अगर दक्षिण अफ्रीका के मामलों को पूरे अफ्रीका क्षेत्र के आंकड़ों से निकाल दिया जाए, तो संक्रमण मामलों में 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिनकी कुल संख्या 1,82,000 थी। अफ्रीका के लिए WHO की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मत्शी दीसो मोएती का कहना है कि किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए, अफ्रीका में तीसरी लहर अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका क्षेत्र के अनेक देशों में अब भी कोरोना वायरस के चरम पर पहुंचने का जोखिम बरकरार है। इस सप्ताह मनाए गए ईद अल अजहा त्यौहार में लोगों की भागीदारी के कारण भी मामलों में बढ़ोतरी होने की आशंका है। ऐसे नाजुक हालात में सभी को एहतियाती उपायों पर और भी ज्यादा जोर देना होगा।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक नई रिपोर्ट बताती है कि कोविड-19 महामारी की वजह से व्यापक पैमाने पर रोजगार और आमदनी वाले कामकाज खत्म हुए हैं। संकट से उबरने के प्रयासों के दौरान कम संख्या में ही महिलाएं रोजगार में वापसी कर पाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक आमदनी वाले कामकाज फिर से हासिल करने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम होगी। एक रिपोर्ट के साथ प्रतिष्ठा जैन।
वर्ष 2019 और 2020 के बीच दुनिया भर में रोजगारशुदा महिलाओं की संख्या में 4.2% की कमी हुई, जबकि रोजगारशुदा पुरुषों की संख्या में 3% की कमी देखी गई। इसका अर्थ है कि वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में रोजगारशुदा महिलाओं की संख्या लगभग 1,30,00,000 कम होगी। दुनिया भर में कामकाजी उम्र की केवल 43% महिलाएं वर्ष 2021 के दौरान रोजगारशुदा होंगी, जबकि ऐसे पुरुषों की संख्या 69% होगी। महिलाओं के रोजगार व आमदनी वाले कामकाजों पर ज्यादा असर की एक वजह उनका ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत होना है जो तालाबंदी के कारण बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं, उदाहरण स्वरूप आवास, खाद्य सेवाएं और निर्माण व उत्पादन क्षेत्र। दुनिया के सारे क्षेत्र समान रूप से प्रभावित नहीं हुए हैं। मसलन रिपोर्ट में दिखाया गया है कि महिलाओं के रोजगार अमरीकी क्षेत्र के देशों में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, उसके बाद अरब देशों और फिर एशिया प्रशांत क्षेत्रों के देशों का स्थान है।
पिछले 50 सालों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण दुनिया के अनेक देशों में व्यापक स्तर पर मानवीय और आर्थिक तबाही हुई है। ऐसी त्रासदियों की सूची में जल संबंधी संकट सबसे ऊपर है। संयुक्त राष्ट्र मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी नई रिपोर्ट के कुछ अंशों को शुक्रवार को जारी किया है। इस रिपोर्ट में वर्ष 1970 से 2019 तक उन 10 बड़ी आपदाओं की एक सूची तैयार की गई है जिनमें सबसे अधिक मानवीय क्षति पहुंची है। इस सूची में सूखा सबसे ऊपर है जिससे 6.5 लाख मौतें हुई हैं, तूफानों की वजह से 6.25 लाख, बाढ़ के कारण लगभग 58,000 मौतें हुई हैं। आर्थिक नुकसान के नजरिए से भी 10 बड़ी त्रासदियों की सूची तैयार की गई है जिनमें तूफान पहले स्थान पर है जिनसे 521 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जबकि बाढ़ से 115 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। आंकड़े दर्शाते हैं कि 5 दशकों में सभी प्राकृतिक आपदाओं में मौसम, जलवायु और जल संबंधी त्रासदियों का हिस्सा 50% है। UN एजेंसी ने चिंता जताई है कि जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मौसम, जलवायु और जल संबंधी खतरों की आवृत्ति और गहनता बढ़ रही है। और अब बात सुरक्षा परिषद की। अगस्त महीने के दौरान भारत सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष देश होगा। 15 सदस्य देशों वाली सुरक्षा परिषद का हर सदस्य देश बारी बारी से 1 महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता संभालता है। इस सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष वोल्कान बोस्किर और UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति के बीच बुधवार को मुलाकात हुई जिसमें सुरक्षा परिषद के अगस्त महीने के कार्यक्रम पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट के साथ महबूब खान।
अगस्त 2021 में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के पास रहेगी। महासभा अध्यक्ष के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार भारत के राजदूत TS तिरुमूर्ति ने UN महासभा प्रमुख को भारत की अध्यक्षता के दौरान होने वाली मुख्य गतिविधियों से अवगत कराया। इनमें समुद्री सुरक्षा और टेक्नोलॉजी व शांति रक्षा के मुद्दे पर उच्च स्तरीय खुली चर्चा के साथ साथ आतंकवादी कृतियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए उभरने वाले खतरों पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी शामिल होगी। इसके अलावा बुधवार को ही मुलाकात में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के दौरान उच्च स्तरीय सप्ताह की तैयारियों के सिलसिले में भी बातचीत हुई। महासभा अध्यक्ष वोल्कान बोस्किर ने सुरक्षा परिषद की अधिकांश बैठकें व्यक्तिगत रूप से आयोजित किए जाने और अगस्त महीने के दौरान सुरक्षा परिषद के समृद्ध कार्यक्रम के लिए भारतीय राजदूत का आभार जताया। भारत के राजदूत और UN महासभा प्रमुख ने अगस्त 2021 में साथ मिलकर कार्य करने का संकल्प रेखांकित किया। जुलाई महीने में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता फ्रांस के पास है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 वर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ है। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं जिनमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों के नाम हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका।
संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक क्यू डोंगयू ने टिकाऊ रहन सहन में ज्यादा निवेश किए जाने का आग्रह किया है ताकि विश्व की बढ़ती आबादी के लिए भोजन की व्यवस्था की जा सके। UN एजेंसी के शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को इटली के नेपल्स में पर्यावरण के मुद्दे पर G20 समूह की मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
UN एजेंसी के शीर्ष अधिकारी क्यू डोंगयू ने कहा कि मौजूदा दौर की एक बड़ी चुनौती है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करते हुए खाद्य उत्पादन का स्तर बढ़ाना। उन्होंने स्वस्थ भोजन के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण में निवेश करने पर बल दिया। बताया गया है कि दुनिया के सामने फिलहाल 3 बड़े संकट हैं: जैव विविधता की हानि, जलवायु संकट और वैश्विक महामारी का असर। UN एजेंसी प्रमुख ने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों से टिकाऊ प्रबंधन, डिजिटल नवाचार, बेहतर देखरेख और निवेश के जरिए निपटा जा सकता है। वनों को पुनर्बहाल कर जलवायु परिवर्तन के असर को कम किया जा सकता है और पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम भी संभव है। जैव विविधता के नुकसान और भूमि क्षरण पर रोक लगाकर प्रति वर्ष 1400 अरब डॉलर की बचत हो सकती है। उन्होंने कहा कि UN एजेंसी का मुख्य कार्य कृषि भोजन प्रणालियों को ज्यादा दक्ष, सुदृढ़, समावेशी और टिकाऊ बनाना है और इन 4 क्षेत्रों में बेहतरी के प्रयास किए जा रहे हैं: उत्पादन, पोषण, पर्यावरण, जीवन।
तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।